women journalists face threats and resistance, yet they fight for truth, expose injustice, and push for lasting solutions. On a very exciting note today, we have the best of women journalists with us, talking about journalism, politics, press freedom, and much more. Welcome. How have you been today?
Oh, pretty good. I woke up really early, and then you picked me up.
Same here. I mean, I woke up 4:30 in the morning. My mom woke me up, and uske baad se I'm all up.
Mera thoda alag tha. Main aaj thoda aur late uthi kyunki Sunday tha. Beti ka school nahi tha, to 9 baje aaram se uthi. क्योंकि था कि संडे है, आराम से चलेंगे, तो बाकी सब तो बस यहाँ की तैयारी और यहाँ पर
है. I think you know. Yeah. I was 20-25 minutes late. But at least I had my coffee and I'm all buzzing for this.
Okay, so we are all women in journalism here. And I want to know, what's it like for you to be a woman journalist in India today?
I think I have had very limited exposure in India. When, you know, especially working as a female journalist, but whatever it has been, it's been slightly very difficult and challenging at times, you know, because first thing first, whether regardless you're a, you know, working journalist or not, as a female, there's always at the back of your head, there's, you know, there's always that worry, am I going to be safe wherever I go to report? I mean, as journalists, we always want to cover stories that takes us to, you know, sometimes to dangerous locations, and not always it's going to be the case that, you know, you have God or somebody looking after you, especially, you know, if you're going alone.
Akriti, ek chota sa newsroom hai mera, ek choti si team hai, to is tarah ki training to abhi tak maine nahi di hai, lekin ha, jab female journalist meri team mein hoti hai to कोशिश करती हूँ कि वो लोग सेफ रहें, क्योंकि जो उनकी सेफ्टी है वो मेरी जिम्मेदारी है. तो डिपेंड करता है स्टोरी वाइज के, जैसे मैं लास्ट टाइम मेरी टीम में, दिल्ली की ही बात है, दिल्ली में जो लड़की हमारे साथ थी उस समय, वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय, और उस समय बहुत भीड़ थी उस वक्त, और मैं कहीं से आई थी, दिल्ली के बाहर से मैं आई थी, और वो पूरी रात वहाँ पर थी. वो चीज़ मुझे पता नहीं थी, एक्चुअली मुझे बाद में पता चली, और फिर पता, मैंने उसको डांटा भी इस चीज़ को लेके, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि तुम वहाँ रात में मेरे लिए काम कर रही हो, मेरे प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रही हो, तो अगर कुछ गलती से हो जाता तो वो मेरे ऊपर आता. लेकिन फिर मैं अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ उसके पास पहुँची, सब कुछ बात की, सब कुछ ठीक था. हालांकि फिर वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अब जानने वाले लोग भी हैं, तो मैंने देखा कि कौन एक मेल दोस्त है जो उसके साथ हो सकता है, एक जर्नलिस्ट है जो एक, वही जैसे बताया उन्होंने कि आपको एक सेफ्टी सबसे बड़ा मेजर इशू है यहाँ पर, तो आप सेफ रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो. मैंने उसको वही कहा कि तुम सेफ हो तो और भी स्टोरीज हो सकती हैं, पर तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उस समय जो जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिस थी वहाँ पर, वो किसी को आने नहीं दे रही थी, अगर वो वहाँ अंदर है तो वो बाहर जाने नहीं दे रही थी, और बहुत धक्का वक्का हो रहा था, तो वो सब देखना पड़ता है. लेकिन हाँ, वो ट्रेनिंग तो अभी हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हाँ, वो जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि फील्ड में मैं भी रही हूँ और भी लोग रहे हैं, तो जितना हम जानते हैं एज अ फीमेल जर्नलिस्ट भी, हम लोग जानते हैं कि क्योंकि इंडिया में एक फीमेल होना ही अपने अंदर एक चैलेंज है, तो वो सब चीज़ देखते हुए हम लोग वैसे ही वर्बली बताते हैं. लेकिन
मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि क्या कभी आपका ऐसा इंसिडेंट हुआ है वेयर यू हैव चोज़न टू नॉट डू अ स्टोरी only for your safety?
So I'm not a trained journalist per se. I'm just a content writer, and I have been fortunate enough, you could say, ki I've been into editing news about different kinds of subjects, from Palestine to cryptocurrency to business. So that's, I do not have one forte. Abhi tak, filhal, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन फैक्ट. आई मीन, आप लोगों का मैं अगर मैं सुनती हूँ ना, तो मेरे ख्याल में आप लोगों में से सबसे कम एक्सपीरियंस फील का मेरे पास है, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन जर्नलिस्ट. बट दैट सेड, मुझे पता है कि इट कैन बी चैलेंजिंग, स्पेशली इफ यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, यू नो, एक्सपोजिंग योर सेल्फ एज अ फीमेल, एंड इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, आप यू कुड बी फ्रॉम एन एलीट बैकग्राउंड, यू कुड बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, जब तक आप एक यू नो जर्नलिज्म कर रहे हो, आप कोई भी स्टोरी कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव राणा अय्यूब का काफ़ी बड़ा एग्जांपल, राइट? शी हैड टू लीव द कंट्री एंड आई एम क्वाइट श्योर ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, फीमेल जर्नलिस्ट, जिनको सेफ फील नहीं होता बट दे आर स्टिल डूइंग इट एंड हैट्स ऑफ टू देम. इसी वजह से आई मीन मैं तो आप लोगों के लिए सीरियसली, मतलब आप लोग मेरे लिए मिसाल हो. You guys are inspiration, especially what Neena is doing with what you are doing as a person. Tum itna mashallah kar rahi ho, you know, apne aage ek I matlab maine hum log jab mile the CME mein, right? Uske baad se jo hum log ka ek acha sa bond ban gaya hai, I'm seriously like I'm so proud of you and Kasturi as well, and you of course. So मतलब मेरे लिए आप लोग मिसाल हैं, लाइक यू गाइस आर सीरियसली ब्रेव, ब्रेवर देन मेन आउट देयर. ऑनेस्टली इट्स नॉट इजी बीइंग अ फीमेल हियर, इंडिया में तो नहीं है.
आई जस्ट थिंक इट टेक्स अ लॉट फॉर अस टू बी ऑन द सेम लेवल एज अ मैन. सो इफ दे से दैट वी आर ऑन द सेम लेवल, समटाइम्स आई हैव टू डिसएग्री बिकॉज आई एम लाइक द स्ट्रेंथ दैट इट टेक्स अस, वी कम फ्रॉम लाइक लेट्स से 20, सो यू आर ऑलरेडी एट 100 एंड इट टेक्स अस 80 टू बी देयर. So we have a lot of strength there.
I have some privileges. Yeah. I mean, I'm not saying that men are safe. They are not.
Yeah.
Of course not. Lakin men do have
some privileges.
Some privileges over females. ठीक है. At the end of the day, आप तब भी sensitive हो, आप तब भी एक weaker gender माने जाते, because you are कहीं ना कहीं you know, I wouldn't say weak, but privileged.
No, I completely agree with that, because obviously we had Delhi riots, we had, you know, the issue in Kashmir and everything, you know, the insurgency times and stuff, and at the forefront were a lot of male journalists, and you know, as a female journalist, it's always very, I mean, I would, if I was someone who was covering these riots or, you know, these kind of incidents, I would think 10 times whether I should sign up for this opportunity or not. Like, am I going to be safe? Am I going to make it home, back? So that's always like on top of my head, at the back of my head. Mind.
I mean, you know, Akriti, I'll just say this here on the record. It's my dream and like, you know, to visit every state and union territory from of India and report stories from there. So I've worked as an independent journalist for the last 6 years, and I've worked across national and international platforms. Now, when I'm mainly working with international media and I'm out there on the field, my editors and colleagues are in a different country. There's nobody here to check on me when I'm in real time on the field. So yes, there have been incidents where I was worried about my safety, where my family was worried about my safety, and I had to, you know, just make certain decisions at that time that like, okay, we need to get the hell out of here because it's no longer safe. So what you asked earlier about like, you know, whether or not if I've let go of a story because I think it's not too safe for me, I want to answer that question by also looking at the press freedom climate here in India. We're at this moment here in the industry that is facing a lot of issues financially, yes, but also where journalists are facing a lot of retaliation just for doing their jobs, just for covering stories that are critical of like, you know, certain people in power. And what happens is that like in that situation, you have to put yourself as a woman, you know, traveling alone in India, different parts, and where you are vulnerable because of who you are on the field. But I also want to say that I found a lot of support and solidarity in my network of women media, right? Like, you know, just making alliances as I go with other women journalists, like, you know, with you, with like Neena ji, or like, you know, other people I've met on the way, or people who have reported from there, just saying that like, how safe it is. And I just want to say that yes, it is exhausting to constantly think about, say, your safety, and like, you know, like everybody here said that if I'm going to make it back home alive, when I just want to do a story, when I just want to travel somewhere and I want to report, it's very exhausting also to
I think it's not only limited to, you know, doing those, you know, hardcore stories.
Yeah.
Like,
yeah.
It could be, you could be doing some really, like, fluff or, like, soft piece. And even then you're like, oh, my God, am I am I going to be okay?
Some of us here are from the marginalized community. And I think, unfortunately, it plays a very big role, not only professionally, but also personally for us. And of course, Meena ji, it's been your entire life. So why don't you tell us a little bit about, I mean, why and how did you have to suffer and how did you come along to succeed?
जैसे अभी सेफ्टी की भी बात हो रही थी तो मुझे एक याद आया कि जिस तरह का मेरा काम है तो उस काम की वजह से बहुत गालियाँ पड़ती हैं मुझे, और मतलब इतनी गालियाँ पड़ती हैं कि दो साल पहले तो इस तरह के थ्रेट मिलने लगे थे क्योंकि कॉल इतने आते, रात रात भर कॉल आते थे और रैंडमली लोग कॉल करते थे और कहते थे कि अब तेरा घर का हम लोग यूं ही पता लगा लेंगे, तेरे को घर से उठवा लेंगे, तेरा गौरी लंकेश जैसा हाल कर देंगे हम लोग. तो वो सब जो थ्रेट आते थे तो वो मैं सोचती हूँ कि ठीक है मेरे साथ जो हो, क्योंकि वो मैंने पसंद किया है कि मुझे ये काम करना है, मुझे किसी ने मुझ पर थोपा नहीं है. तो लेकिन मेरी वजह से या मेरे काम की वजह से मेरी फैमिली पे कुछ नहीं आना चाहिए. तो वो कुछ दिन तो इतने थ्रेट में गए क्योंकि छोटी बेटी थी और बेटी को भी लोग गालियाँ दे रहे थे, रेप थ्रेट मिल रही थी. तो वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत डरावना था. और उसके बाद थोड़ा सा सोशल मीडिया पे मैंने सच में मतलब थोड़ा सा कम किया है, अपना जो एग्रेशन था वो थोड़ा सा कम किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली को कुछ भी हो. मैं उसको अपने काम में दिखाती हूँ कि मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, जो मेरा काम है मैं वो काम करती हूँ. तो शुरू से अगर मैं कहूँ तो सच बताऊँ मैं जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहती थी. मैं अपने आप को एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट कहती हूँ. ये जर्नलिज्म की पढ़ाई ज़रूर की थी मैंने, लेकिन वो भी क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था तो किसी ने सजेस्ट किया कि अच्छा ऐसे ऐसे चले जाओ, और जर्नलिज्म का मतलब वही टीवी वाला एंकर, तो वही सब पता था. लेकिन जब जर्नलिज्म में आई तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली क्योंकि जिस कम्युनिटी से हूँ उस वजह से भी देखने को मिला. और फिर उसके बाद अपना शुरू भी किया तो जब जो काम करती हूँ तो लोगों को लगता है कि नहीं हमारा, क्योंकि काम सारा कास्ट पे फोकस्ड है तो लोगों को लगता है कि नहीं यही कास्टिज्म फैला रहे हैं. तो इस वजह से बहुत गालियाँ मिलती हैं, लगातार गालियाँ मिलती हैं. जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि बेटी को, राहुल गांधी के इंटरव्यू की बात हो रही थी, तो जब वो इंटरव्यू भी किया तो उस इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोगों ने, सब तरह के लोग मुझे गाली देते, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक ही तरह के लोग देते हैं मुझे. अगर कास्ट की बात करो तो मुझे अपर कास्ट के लोग भी गाली देते हैं, जो इवन जो कास्टिस्ट हैं जिनको लगता है जो कास्ट सिस्टम है वो चलते आना है वो भी देते हैं. इवन जो दलित कम्युनिटी में हैं वो लोग भी मुझे देते हैं, क्योंकि जो एक पैट्रियार्की है इस देश की, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सब जगह वो ग्लोबल इशू है पैट्रियार्की, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. तो उनको लगता है कि नहीं एक महिला हो के ऐसा काम क्यों कर सकती है, हम हैं ना, क्योंकि हमेशा मर्दों को लगता है नहीं हम हैं सब काम के लिए तो हम करेंगे, तो महिला क्यों कर सकती है. तो उस वजह से भी गालियाँ. और वो राहुल गांधी वाले टाइम पे लोगों को लगा कि अच्छा बेटी को लेकर जा रही है तो ये सिंपथी लेना चाहती है, तो जब मेरी फैमिली में भी कोई संभालने वाला है नहीं. और एक चीज़ और, महिला के साथ ये भी है कि वो काम करती है तो भी उसको गाली पड़ती है, नहीं करती है तो भी उसको गाली पड़ती है. अगर वो माँ है तो अगर वो बच्चा बाहर लेकर जाती है तो सिंपथी की गाली पड़ती है, नहीं लेकर जाते तो कहेंगे अच्छा देखो कैसी माँ अपने बच्चे को छोड़ के चले गई. तो गाली तो जब सब जगह से पड़नी है तो ठीक है मैं अपना वो काम करूँ ना जिससे मुझे खुशी मिल रही है. तो फिर अब लगता है कि ठीक है तो आप गाली दे के खुश हैं तो आप गाली दे के खुश रहिए. और एक ये भी है कि मैं जो, मुझे लगता है कि हमारा जो काम है अगर वो चेंज ला रहा है सोसाइटी में, क्योंकि एक जो काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं इस देश में, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, जो पैरामीटर्स बने हैं उन पैरामीटर्स को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर अब गाली नहीं पड़ती तो लगता है मेरे काम में कमी है, तो अब गाली पड़ती है तो लगता है कि हाँ मैं ठीक जगह जा रही
हूँ. सो अगेन लाइक आई सेड, फॉर्चुनेट इनफ टू यू नो नॉट एक्सपोज माई सेल्फ एज इन आउट के भाई, यू नो आई हैव डन few articles about Palestine, but CME got hacked after 7th October, and all of our work was like, you know, completely...
As if it didn't exist.
And I still remember, us pe itna zyada content ke lihaz se audience nahi aata tha, but we do understand the kind of hate we get, you know, considering the... background that we come from. And then I wouldn't go ahead and say we are marginalized, but we are being marginalized.
we are very much part of you know, the mainstream of India. We have always been a part of mainstream in India. The only issue is ke hame marginalize kiya ja raha hai, and that goes for all the communities. India was and has been very diverse, matlab since I think epochs,
yeah.
I would say, from Greeks to Aryans to Muslims to Arabs, right? Har koi aaya hai is mulk mein, and sab ne kahin na kahin kisi level pe is mulk ko apna ghar banaya. And talking about the natives as well, right? To mujhe nahi samajh aata ki ye jo narrative hai ki hum majority hain ya ye log minority hain, ye stand bhi kahan karta hai? It doesn't, unless and until aap politics ke bare mein baat kar rahe hain, theek hai, tab to yes. Varna you and I get along very well, theek hai, she and I can get along very well. Abhi hum log baat kar rahe the apna, jab hum log piche baithe hue makeup kar rahe the, right? To itne acche se, matlab pehli dafa hum log bahut sare log pehli dafa mile, lekin uske bawajood bhi hamare beech mein camaraderie hai. I do not understand the fact that I have to call myself marginalized, you know, to be considered as a human being or a citizen of India. No. I mean, I have the right, and this right has been given to me, you know, by nature itself, by God himself. Theek hai? To agar aap apni pehchan banana ja rahe hain, Ameera ji ne apne abhi kaha, औरतों के साथ मसला ये है ना कि हम बड़े इजी टारगेट होते हैं किसी के लिए भी, ठीक है, राइट फ्रॉम द मेन टू द वेमेन एज वेल, बिकॉज समटाइम्स आई सी वेमेन गिविंग हेट टू वेमेन, या एंड इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज, बिकॉज आई हैव एक्चुअली सीन कि मेन स्टिल अप्रिशिएट यू टू सम डिग्री. Okay, you are being brave, you know, you're exposing yourself out there.
But you know, actually, sorry to cut you off, I just feel like somehow we're trained or wired to think like no woman out there is good for us, which is also the reason for this episode, for it to be women centric, that we are actually there for each other. But you know, we're wired to think that they're not, we're going to use the B words and stuff.
The funny thing is ke there is misogyny in men folk as well as the females. Dude, why?
Yeah.
Mujhe nahi samajh aata.
You're playing against your own team.
Yeah, it's true. Even in a small, I mean, I won't say it's small, but it's like, oh, like, you know, if a boy is cheating, we'll be like, oh, the girl is such an ass, you'll go attack the girl and you'll... It's like,
Actually, सारे jokes, सारे गालियाँ, ठीक है, सारे yes महिलाओं को बनी
है. सबसे ज़्यादा ironic इन्हें चीज़ लगती है कि when women start abusing other women, using those galis.
Yeah.
Like, it doesn't really make sense, dude.
Yeah.
No.
So,
I mean, I would go ahead and say कि हर किसी को ना ये time ऐसा है कि हर किसी को अपना राइट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ह्यूमन बीइंग, एज अ फीमेल, इवन एज अ मेल, बिकॉज यू नो मेल्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, स्पेशली विद द लॉज दैट आर कमिंग नाउ अगेंस्ट यू नो एलिमिनेशन एंड ऑल दैट. ठीक है, दैट्स नॉट फेयर फॉर द मेन फोक एट लीस्ट. आपको अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने आप को ना असर्ट करें.
वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन द कार ऑल्सो, वेयर आई सेड आई डोंट नो, मे बी आई कम फ्रॉम, वी यूज द वर्ड इलीट, आई डोंट नो, नॉट इलीट क्लास, बट लाइक मे बी लाइक सोशल स्ट्रक्चर, वेयर आई हैव नेवर कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट इफ समवन्स सरनेम इज अ सर्टन थिंग, आई लाइक स्विच टू थिंकिंग दैट दे कम फ्रॉम अ सर्टन कास्ट और दे आर डिफरेंट फ्रॉम मी, यू नो. आई हैव नॉट फेल्ट लाइक दैट एवर इन माई लाइफ, which is why I don't know, like, when people say that they have issues, I don't want to come across as ignorant, but I sometimes feel like I'm fortunate that the upbringing that I have, the culture and the society that I've been in, has taught me to not differentiate. Maybe also because sometimes I'm not differentiated. The only difference is when I go to Germany that I'm brown. So they feel like, oh, that's different. But I've not faced that here. And I want to know from you also, Shivi, like, is that something on your mind already? Like, do you feel like these are things which you read about and have not really faced so much?
To be honest, like, I really blame our education system in terms of that. I mean, you know, even if today I go back to my, you know, 10th grade history books or politics or, you know, my 12th grade, whatever, we've never had that, you know, those passages about, you know, the Dalit voice or, you know, how the sufferings of the, you know, how basically the caste hierarchy works. And I think I learned it. So I studied in a boarding school and I learned it only when I came out of my school. Like, you know, when I saw people talking about this, when I started reading news. I mean, you know, because I think our young generation, we're so close to how the current affairs work, unless you're super interested in that. Like, nobody reads news. Like, I have friends who are like 25-year-olds and I think they consume their news from social media or whatsoever. But I think in our, we really need some major reforms when it comes to our education system. Like our textbooks, I don't know when they were updated last, but they really,
apparently recently when they removed all the Mughals.
नहीं actually इधर मैंने एक story की थी India Spend के लिए, तो वहाँ पर जो है जो primary books में थे उसमें दलित और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनकी हिस्ट्री उनके जो वर्ड्स हैं वो सब हटाए जा रहे थे. तो जब बच्चा प्राइमरी स्कूल का बच्चा सबसे ज़्यादा उसको अपना याद रहता है कि उसने क्या सीखा क्या पढ़ा. आप सोचिए अब जब वो बच्चा पढ़ेगा, वो सब तरह के बच्चे जाते होंगे उस स्कूल में, हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ठीक है. अब वो जब पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरी कोई हिस्ट्री ही नहीं है, ना ही मेरे यहाँ से कोई हीरो निकला, ना ही मेरे बारे में कहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो मैं कहाँ से आया, वो कैसे जानेगा. इवन दूसरे जो कास्ट के बच्चे हैं उनको भी नहीं पता रहेगा. तो ये एक जो इस तरह का जो पूरा हिस्ट्री ही मिटाया जा रहा है. आप तो अगर मान लीजिए मैं बच्ची हूँ और मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं देखूंगी कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे मतलब पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं, कुछ लड़ा ही नहीं, कुछ हासिल ही नहीं किया, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं से आगे दूसरे ही जगह से आ गया हूँ, तो वो क्या सीखेगा. तो ये एक प्लानिंग जो हो रही है आपको एक तरफ ख़त्म कर देना, तो वही सब चीज़ें तो हो रही हैं अभी, जैसे बताया कि मुगलों का ख़त्म किया जा रहा है और भी चीज़ों की ख़त्म किया जा रही है. तो सिर्फ आप इस इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग बोली भी मिलेगी, अलग अलग जातियाँ भी मिलेंगी, अलग अलग तरह के लोग भी मिलेंगे. तो आप किसी एक पे नहीं रह सकते, कोई एक जाति या एक तरह के लोग नहीं रह सकते यहाँ पे, आपको सब तरह के लोगों को मिलाकर चलना पड़ेगा.
ये तो खूबी है,
यही खूबी है. एग्जैक्टली
यही हमको ईद पे भी छुट्टी मिलती है और दिवाली पे भी.
हाँ बिल्कुल, और ये होना भी
चाहिए.
आई थिंक इवन इन द कोर्स वर्क वगैरह वी लाइक आई रिमेम्बर लाइक इन माई 10th ग्रेड और 12th ग्रेड वी वर असाइंड टू रीड द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. सो यू नो इट हैड ऑल एवरीथिंग यू नो रिलेटेड टू होलोकॉस्ट एंड यू नो द वॉर एंड एवरीथिंग. I think, why not prioritize, you know, giving your children books about, you know, stories coming from marginalized communities within India?
Yeah.
We need that. We need that. Yeah. Like, why, I mean, obviously, that is important. That's massive history, you know, chapter and everything. But we also need, like, similar books. That tells you a lot about your community within your country.
People live in very insulated communities here, especially with the upper middle class groups.
Yeah.
So I personally come from an inter-caste, inter-religious background. And because of my surname, I'm always like, you know, it sticks out like a sore thumb for many people. And they say that like, wait, what's up? What's happening here? What's your caste? What's your ancestry? Now, I can't possibly summarize some 250 years of like conflict, migration, and you know, interfaith and intercaste marriages of what my family's been through in just like a couple of sentences. And I think that's just too much of history. So I always say, I'm from all over the Indo-Gangetic Plains.
Yeah. Fantastic.
What are you gonna do about it? I'm from all over the Indo-Gangetic Plains.
That's summarized for you.
Yeah. And like, you know, now there's a border, so there's India and Nepal that is separate. Mm. But, you know, we were all one together. And I grew up in different cities of India, right? And I moved schools very often. So one thing what was constant everywhere I went, other than being bullied, was also being targeted because of my surname and my different caste. And what I was sharing earlier with Meena ji was that there were so many questions of like, you know, what's your caste, what's your caste. So one thing, you know, caste supremacy is taught at a very young age.
Yeah.
It's taught at a very young age. And it's not taught like, you know, the marginalized communities, why are they marginalized and on what basis are we discriminating them and why is it a wrong thing to do? So yes, the textbooks might have something about like, you know, Dr. Ambedkar and like, you know, Dalit resistance. One sentence here and there, something there will be.
But that's about it.
But in everyday lives, yes, there is caste supremacy. So because the kids who were bullying me back then, and even now, like, you know, when I interact with like, say, certain kids who live in these upper middle class, you know, insulated, gated societies. And they're like 7, 8 years old guessing each other's caste that tum to Khatri ho, tum Rajput ho. And I faced these, and I was bamboozled.
Yeah.
So because, and mainly my childhood was in Bangalore. But when I'd come up to north, the northern sides in the winter, and here in Delhi, Gurgaon, and then I'd meet certain people and they'd say like, huh, 7, 8 year old kids telling like what, when I was 15, 16, नहीं आप आपका पापा सरनेम ये लगाते हैं आप ये होता आप शायद खत्री हो वी आर नॉट खत्री नहीं हम लोग तो खत्री हैं नहीं हम लोग ब्राह्मण हैं हम लोग ये व्हाई डज अ किड लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरोगेट दैट व्हाई अ किड हु इज 7, 8 years old हु डजंट इवन नो हाउ टू डू अरिथमेटिक प्रॉपरली व्हाई डज दिस किड नो दैट लाइक यू नो आई एम ऑफ अ सर्टेन कास्ट एंड देयरफॉर आई एम मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस कास्ट एंड देयरफॉर माय सोशल सर्कल हैज टू बी इन्वॉल्व इन दिस कास्ट ओनली सो यू राइट द एजुकेशन सिस्टम हैज रियली लाइक यू नो It's failed us here in some way. And I also studied history as a part of my bachelor's degree. So that's when I really went deep into it. And of course, my own engagement as a journalist, it's the, you know, because when we are out on the field while reporting stories, caste is one thing that like, you know, wo har jagah dikhta hai. You can't like look away from it.
वो पैदा होने से लेके मरने तक है.
You blind नहीं हो सकते इसमें. आप हर जगह हर किसी story पे जाते हैं. अभी मैंने जो कुछ stories देखी है, It shows how caste violence, like, you know, just overlaps, you know, against other forms of violence. Yeah.
No, I think like Meena ji said also that there are so many different caste classes in India that we should embrace. I also think that those are reasons to discriminate. We have 1001 reasons to discriminate. And it's the same saying that you might have 10,000 reasons to not be with someone, but all you need is one if you need it. And I think it, the same way it works, that you might have so many reasons to discriminate, but why is the question? Like, you just need one to not, which is we are all humans and we shouldn't. But on that note, we'll now talk about the fact that today is Press Freedom Day and what's it like to work in India, the world's largest democracy, but ranks 159 on the Press Index. So that's a great reaction.
मैं actually मैं हर जगह इस चीज को quote भी करती हूँ और जो इस समय मीडिया की हालत है या तो हम एकदम pro हो गए हैं या हम एकदम against हो गए हैं हम लोग social justice की बात ही नहीं कर रहे हैं और जो लोग कहते हैं कि इस समय मीडिया को ज़्यादा खतरा है मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि समय हुआ है क्योंकि 2014 के बाद ही लाइफ नहीं चेंज हुई है ना ऐसा नहीं था उससे पहले हम लोग नंबर वन नंबर टू पर थे उससे पहले भी हम लोग 143 रैंक पर थे तो और एक चीज़ और जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में बहुत खूबसूरती है अलग अलग तरह के लोग हैं जातियाँ हैं लेकिन मीडिया में अगर आप देखें तो एक ही तरह के लोग भरे हैं आज तक कोई दलित आदिवासी एडिटर नहीं रहा जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है फिर भी क्यों नहीं मिले तो वो कौन सा ऐसा फिल्टर था कि मीडिया में जो लोग थे जो न्यूज़ रूम में थे उन्होंने वो फिल्टर लगाया और ये लोग पहुँचे ही नहीं और ऐसा नहीं है इन्होंने पढ़ाई नहीं करी आप देखिए इंस्टीट्यूट में जाइए आरक्षण की वजह से पहुँचे ना और कोई भी अगर वहाँ पहुँच रहा है तो कोई ये तो नहीं सोचेगा कि मुझे घर बैठना है पढ़ाई करके सबको नौकरी करनी होगी तो मैं वही कह रही हूँ कि मीडिया की जो ये हालत है तो कम से कम दलित आदिवासियों की नहीं है क्योंकि वो लोग न्यूज़ रूम में ही नहीं थे तो वो एक ही तरह के लोग जब आप रखेंगे जब हॉरिजॉन्टल आप डाइवर्सिटी नहीं रखेंगे तो यही हालत होनी है चाहे वो मीडिया हो चाहे देश हो चाहे कोई भी आप कुछ भी कोई भी फील्ड ले लीजिए क्योंकि किसी भी फील्ड में नहीं है
तो आई थिंक आई वॉन्ट टू डेल्व इनटू नाउ दिस न्यूज़ कवरेज एंड ऑल ऑफ अस लाइक हैविंग एन इशू and complaining about the fact that the news coverage between independent media and mainstream media in India is very debatable. So as independent journalists, also, of course, we end up covering things which may be a little out of the box that a mainstream media will not cover, but we still have a lot of restrictions. So what do you, like the new things that are coming about with everything happening with Kunal Kamra, the work bill, what, I mean, how do you think that the news coverage should be like in your eyes?
I'll start off with saying this one thing. I'm 25 years old and I've dreamt about being a journalist since I was like 12. And the dreams I had back then when I was a teenager versus the dreams I have now, they've changed. Because I dreamt of being like on the TV or like, you know, having my own show and everything. And now I'm not sure if I trust mainstream TV news as much anymore. I grew up watching some hard-hitting stories covered from the ground by like NDTV, Ravish Kumar. And now you don't see that stuff on TV anymore. So it's really disappointing the way mainstream media has headed and how polarized it's become. So in the face of this, we have amazing channels like, you know, that are doing independent work. And we have to keep pushing. And like, you know, the kind of stuff that I cover, I mainly cover on transgender and queer rights in India, looking at many intersections that envelop queer rights in India, because there's many parts of it. And thankfully, there are some independent outlets that are willing to commission me, that are willing to work with me and give my stories a platform. What Meena Ji here is doing with the Mook Nayak is fantastic. But it's, I think, also comes with a lot of censorship, a lot of legal challenges. Look at what's happening with Kunal Kamra. Look what's happened. Look at how many like defamation lawsuits and stuff that News Laundry and The Wire have been like dragged through. So the idea is to like, you know, bleed out these independent media publications, that whatever little money they have, just keep throwing like lawsuits at them so that they just end up bleeding out.
Yeah, I want to, also throw like a question here, is that something that I've been feeling at least the last few months in coverage is that, of course, things like what happened with Ranbir Alabada and Apoorva were taken to an extreme level, like what happened. But I also think the media coverage of it was very extreme compared to what it should have been. And the argument that I was constantly having with myself is that I don't want to see that when there are 10,000 other things that should be in news should come out. So do you think that that's the fault of media, or do you think that's the fault of the people or the politics? Like, what do you think?
I think both. It's our attention spans that are like diminishing. And what Meena Ji said, that right now there's not enough push towards social justice. There's, everybody has opinions. Everybody has like, you know, oh my God, I hate XYZ party. Oh my God, I hate XYZ leader.
Sarkar girane mein ja rahe hain bas sab.
But like there's no substance to it, and people are not ready to look at the wider issues. And what I think we're like losing critical thinking skills at the end of the day.
Exactly.
So that's why, yes, like, you know, some that issue of any clickbait news. I think what happened with those comedians, Ranbir Alabadia, Sameer Aina, was also really bad. But the amount of like airtime it got, the amount of coverage time it got versus other major issues that were going on in the country. It's a big country, you know. So I mean, those issues were not getting enough limelight. It's really about what sells, what gets you the hits on, you know, your YouTube videos and your Instagram reels, and it's really unfortunate to see.
At the end of the day, I think ye kab se hone laga hai ki media is actually projecting their own opinion rather than being neutral. That's the whole question. Agar ye cheez khatm ho jaye, to I think aadhi se zyada issues jo hai is country ke wo surface pe aane lagenge. Not many people know ki, you know, we are running out of safe water. Not many people know ke,
how toxic the Delhi air is.
The heat waves
will hit us soon.
Aaj ke liye, check kar rahi thi, kal hi main news kar rahi thi, yellow wave alert ho chuka hai. 42 degrees is hitting. Logo ko, matlab politicians se lekar, environmentalists se lekar, koi bhi jo ke in cheezon ke bare mein soch sakta hai ya solution de sakta hai, they are not coming up. Why? Why are we so concerned about comedians? How come comedians got so relevance in our polity? ठीक है. Why are, मतलब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें करने चाहिए, you know, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो even for that matter रविश कुमार, ठीक है, क्योंकि वो एक mainstream media का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं, and he's pretty much revered everywhere. Mashallah, he's received good awards and recognition. बट ये जब तक हम जैसे लोग और मीना जी जैसे लोग, एंड आई एम सीरियसली प्राउड ऑफ यू अगेन, आप जैसे लोग ये सवाल, काउंटर सवाल नहीं किया जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया से, तब तक नहीं हो पाएगा. यू हैव टू शेम देम.
बिल्कुल. इवन रवीश से भी मैंने कई बार पूछा भी, मतलब मैं उनसे बात नहीं करती क्योंकि वो मेरे, मुझे ट्रोल किया है उन्होंने. किसी को विश्वास नहीं होता कि रवीश कुमार मुझे ट्रोल करते सीरियसली. मतलब आप जब तक थे इंडस्ट्री में आपने कितने लोगों को रखा? आप एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है यहाँ करते. आप किसी को, मैं कह रही हूँ ठीक है आप मेरिट बेस्ड रखते हैं, अगर आप किसी में नहीं है मेरिट, किसी को नहीं आता है, आप उसको महीना, 6 महीना, साल भर भी रखेंगे, बहुत कुछ सीख जाएगा कोई भी. लेकिन क्यों नहीं रखा? आपके पास इतना पावर तो था ना कि किसी को नौकरी दिला सकते हैं, क्यों नहीं रखा? और बहुत सारे लोगों को मैं ये सवाल करती हूँ हमेशा कि क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो ये हालत है सिर्फ आज की वजह से नहीं है, आप लोगों ने जो किया उसकी वजह से भी है, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं.
आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग ओनली कम्स व्हेन यू बिकम द स्केपगोट. बिकॉज यू नो आई थिंक रवीश कुमार वॉज लिविंग कम्फर्टेबली बिफोर यू नो एनडीटीवी वॉज टेकन ओवर एंड एवरीथिंग. But after, you know, the whole controversy within the NDTV and how they pushed him out of the channel, I think that was maybe like a realization moment for him. He was like, you know, our press freedom is under serious risk and everything. I think the press freedom in our country, it's under, I don't know what to say about it. Even like Prime Minister Narendra Modi, he's been a prime minister for nearly a decade. And he has held not a single press conference.
Yeah.
I think. Yeah.
Interviews with Navika Kumar.
Yeah, but that's only favorable journalists he's invited.
Yeah.
Journalists.
But a press conference is different.
Yeah. Yeah, press conference. I mean,
but people who.
I wouldn't have you, you know,
famous.
You know.
But I feel like it's so I get it. But so when I was working in the UK, you know, during the COVID time, we would always have these press conference meetings every week where the Prime Minister Boris Johnson, he would, you know, meet, you know, he would hold a press conference and he would be grilled at every death, every count, every infection. And, you know, when I came to India and I was just like, why don't we have this here? Like, India has had so many deaths and we had, you know, such an unfortunate time during COVID. There were families who were going without oxygen cylinders, you know, even right now, like our pollution rate, our water is contaminated, our air is toxic. Our children are, you know, ending up with really, really risky case of asthma. Why are we not keeping these leaders account? Why are they not hosting these press?
The one line answer for that, according to me, would be that there is no value of life in India. So as journalists, I want to know what is the one solution that you're either looking towards or are working towards, which you feel could be closer to the change that we are looking for, that we are talking about here today.
देखिए जैसे हम लोगों ने बताया 159th rank पर हैं हम लोग. हमें ये नहीं देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि first rank पे कौन है. नॉर्वे, स्वीडन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो फर्स्ट पर हैं. और वो क्यों हैं इस पे हमें रिसर्च करना होगा, क्योंकि वहाँ पर सब तरह के, देखिए जब ब्लैक्स की लड़ाई थी तो सिर्फ ब्लैक नहीं लड़े थे, उनमें वाइट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था. तो जब हम लोग यहाँ पर हैं जो भी फेस कर रहे हैं, सिर्फ ये एक की लड़ाई नहीं है, आपको एक जैसे विचारों को सब तरह के लोगों को जोड़ना पड़ेगा. क्योंकि ये थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि ये बदले की लड़ाई नहीं है. आपने मेरे साथ ये किया तो मैं भी ऐसा करूँगी, फिर वो बदला कभी ख़त्म नहीं होगा. हम लोगों को सामने के जो विचार हैं वो बदलने पड़ेंगे और अपनी साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी है और ये हमारे लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए है. मेरी बेटी है, मैं सोचती हूँ उसका क्या होगा. तो ये हमें इस तरह से हमें देखना होगा और वैसा ही करना पड़ेगा जो फर्स्ट पे आ रहे, तब जाके हम लोग 180 देशों में अभी इतने पे हैं तो फर्स्ट पे भी हम लोग पहुँच सकते हैं.
थिंकिंग अबाउट दिस एंड इट कम्स डाउन टू मी दैट वी आर लिविंग इन एन एज वेयर वी आर लिविंग that there's a psychology of the other, right? What you said, like, you know, marginalizing and furthering or othering people. For me, the solution has been documenting everything and looking at several intersections. Issues of climate change, hate crimes, human rights, mental health, air pollution, none of these are isolated incidents. They exist and they don't exist in silos. They live in intersections and they are a reflection of the times, that we live in today. You know, it's very easy for regimes to peddle this kind of psychology, to peddle this kind of hatred. But I have faith in the people of this country. I genuinely do. And it is because the syncretic culture and coexistence is what we are. This is our culture. Like, this is our true Indian culture. Regardless of whatever religion we come from, whatever caste we come from, this coexistence and the syncretic culture is what we are all about. So to me, that's what's important. Document everything. You know, I've been working on a documentary and all independently. Document everything, from gender rights to mental health, air pollution, and no longer look at these issues in silos. It's a reflection of who we are today. And it's an important time to reflect and plan ahead.
Assertion, matlab, at the end of the day, you have to keep hitting the nail. Theek hai. Usme do cheeze ho sakti hai. Ya to aapko wahi galiyan padengi, wo padti hai. That's okay. ठीक है, लाइक शी सेड, एंड व्हाट शी सेड वाज लाइक, यू नो, आई ओपनिंग कि अगर मुझे मेरे काम के लिए गाली मिल रही है, इट मींस कि मैं कुछ सही कर रही हूँ. दैट्स द होल, यू नो, जिस्ट ऑफ इट. दूसरी चीज़ ये है कि भाई, आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, और सब मिलके एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है. ये नहीं कि भाई मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा है, दलित है तो सिर्फ दलित की बात कर रहा है, या फिर इवन फॉर दैट अली, यू नो, जैसे कुणाल कामरा के साथ हुआ, या व्हाटएवर. हमें सबको एक साथ, जब तक हम प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, एंड वी विल, एंड माशाल्लाह मैं ये एक चीज़ कहूँगी कि ये चीज़ हो रही है, ऑल्दो थोड़ा सा, यू नो, धीरे धीरे हो रही है, बट स्टिल इट्स टेकिंग पेस. तो आई एम ऑल फॉर इट, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह ये आगे जाके, ठीक है, वी विल रीच आवर गोल. एटलीस्ट अगर गोल नहीं रीच करेंगे तो कम से कम थोड़ा सा तो, यू नो, रैंकिंग में ऊपर आएंगे. Right? So that's what I believe.
Yeah. I think for me personally, not only talking about press freedom, but this is like slightly outside, I think we really need to train our journalists, like in terms of law and ethical reporting. Like, this is, I mean, we can see, you know, speaking about the Sushant Singh Rajput entire controversy with Riya Chakraborty and everything. It was not for us journalists, and it was not for our citizens to decide how he died. It was the police. It was supposed to be, you know, the highest court who was supposed to, you know, find out how this person died and everything. And I, you know, this controversy happened. He died during, you know, the pandemic, and everybody was glued to the screen. Everybody was, you know, trying to find out how he died. And there was, like, you know, photo leaks of, you know, his, I think, dead body and everything. That's not how you report on suicide. Because, you know, and there were like news channels who were like mimicking how he died and everything as well. That was terrible. Yeah, that was terrible. Like, no Indian channel who, you know, did all this, who called out Riya Chakraborty, like, you know, a drug dealer whatsoever, they never apologized. They never issued an apology. Why? We need to hold these people accountable. They need to know the ethical guidelines and everything. Like, it just, I genuinely feel like there's some resource and some training that needs to go behind this.
Yeah, I think I do need to point out that though we were discussing that there are many countries, I mean, there are 158 countries that come before India. It's not, of course, we've worked there closely. So it's not easy, and I'm not saying that it's the best. The only difference that I find between there and India that I'd like to point out is that it's, you have the courage to voice out without fearing things like death and rape. Like, that's the only difference. And I think once we clear that, then these solutions that we're talking about can work, because we are a democracy, and just to get that little push is all we need to find all these solutions.
There needs to be law and guidelines to protect journalists for, like, you know, doing these kind of stories. Yeah.
So now that we're coming to an end, I always have a question that I ask my guests, which is that you are all here. You've gone beyond the border, which is also the reason I've invited you. And I appreciate and look up to all of you. So one advice that you would like to give anyone who's going beyond the border in any field?
I think for me, do your research. I mean, even if it's like 20 pages of documents, or like, you know, never ending research and everything, go into the academics, speak to experts, just do your research, because that can build your investigation and stories so much more. And especially when you're on ground, speak to if you know your editor is telling you, oh, you should have at least three quoted, like, you know, three quotes, like speak to people, three people, make sure that you speak to six so that, you know, you can get as much information as you possibly can, and make sure that you have their contacts saved for follow-up stories in general. So yeah, I think that's about it.
मैं अपने फील्ड का ही कहूँगी, इवन अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो जब मैं अपने काम पर हूँ तो ना मेरी कोई जाति है ना ही मेरा कोई धर्म है. तो अगर मैं इस विज़न के साथ काम करूँगी तो मुझे लगता है मैं बहुत पॉजिटिव काम कर पाऊँगी और लॉयल रहूँगी, जस्टिस भी कर पाऊँगी. तो मुझे लगता है कोई भी किसी भी फील्ड पर हो तो जब वो फील्ड पर होता है तो उसकी जाति धर्म नहीं होनी चाहिए, जो हमारे देश में पहले जाति बहुत जाति है. तो अगर हम लोग उसको पीछे रखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक बेहतर देश की तरफ बढ़ पाएंगे.
I think I have like two very quick practical advices for people who are going beyond the borders. One is that have like, you know, basic knowledge of what the laws are. What's the difference between an FIR, a charge sheet, a police custody, a judicial custody? What are the existing laws that protect us? You know, what our civil liberties are? इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, कमेडियन हो या जर्नलिस्ट हो या राइटर हो कार्टूनिस्ट हो जब भी. दूसरी चीज मैं ये कहूंगी फॉर द पीपल हु आर गोइंग बियॉन्ड द बॉर्डर, वर्क ऑन द रिलेशनशिप यू हैव विद योरसेल्फ. आई वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर 6.5 इयर्स. आई फेस्ड हैरेसमेंट एंड थ्रेट्स फ्रॉम माय ओन कॉलीग्स एंड नॉट जस्ट लाइक यू नो फॉर पीपल ऑन द ग्राउंड लाइक व्हाइल रिपोर्टिंग बट ऑल्सो फ्रॉम माय ओन कॉलीग्स. आई फेस्ड सेक्सिज्म एंड हैरेसमेंट एंड इट्स बीन ऑफुल. एंड it takes a very, very strong relationship with yourself to be able to come out of that and to continue working in this profession and to keep investing into this career that I'm building for myself. So you have to have an unshakable belief in yourself that, like, come what may, come whoever, whatever party, whichever ruler, I'm going to be all right. And I yeah, so yeah, just these two practical advices.
Open-mindedness. Hum logo mein open-mindedness nahi hai. We do not tolerate each other, even though this country is, you know, diverse, you could say. So, I think, ek dusre ke baare mein, agar aap kisi bhi field mein ja rahe hain, especially agar journalist, you know, as a journalist, you want to portray yourself, somebody who is professional and knows what he or she is doing, aapko background janna, aapko knowledge hasil karna, उस इशू के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़रूरी है, वरना वो सुशांत सिंह वाला वो मैटर होता है. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस.
या सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई अप्रिशिएट यू ऑल एंड आई होप वी कैन हैव अ पार्ट टू ऑफ दिस सो वी हैव मोर टाइम. एंड थैंक यू, दैट्स इट. हे, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग अंटिल द एंड. To help us continue these conversations, please subscribe on YouTube and like and follow on Instagram and Spotify.